गुस्सा ने इग्नोर किया, बात लंबी नहीं की, गुस्सा तो आया, दुख भी हुआ, लेकिन इग्नोर किया, मकसद पे नजर रखी। कालुद उलना, उनको भी लगा कि लीडर को गुस्सा आ गया, हमने ऐसी बात कह दी। कहने के अच्छा, दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन बताओ कैसी गाय हो। कालुद लना रब्बक, कहा पुकार हमारे लिए अपने रब को। जरा अंदाज देखिए, पीछे बात की हमने, और दो तू पुकार, हम नहीं मांगेंगे, दुआ तू मांग। किसको पुकार? रब्बा का, तेरा रब होगा, हमारा तो नहीं है। ये अंदाज है, ये नहीं कहा कि रब्बुना, रब्बा का, तेरा रब है, उसको पुकार। युबैन लना मा हिया, वो हमको बताए कैसी होती है वो। देखिए अंदाज में कितनी गुस्ताखी है, या फिर वही अंदाज है जो पीछे हम बात कर चुके हैं कि इनका बात करने का अंदाज कितना बुरा है। और यकीन करें कि बाज लोग ना समझ होते हैं ना, नए नए होते हैं, तो वो इस तरह के अंदाज में जुमला लिखते हैं कि उस जुमले का जवाब देने को दिल नहीं चाहता पीएम में। क्यों? कि वो इतना सीधा, अब ये जुमला एक नबी से बोला जाना चाहिए, फरिश्तों का पीछे हमने अंदाज पढ़ा था, हाँ, कि अल्लाह तूने जो दिया वही हमें पता है, ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना, तो अंदाज बदल देता है। देखिए बादबा नसीब बेअदब नसीब, तो ये बेचारे शुरू से इनका मसला ये रहा, इन्होंने किसी की इज्जत करनी नहीं सीखी, इसीलिए अल्लाह ने इनसे नेमत छीन ली। कैसे? यू भाई ये लना माही, या बताओ फिर वो गाय कैसी हो। काला इन्नहू यकूल, बेशक वो फरमाता है, ये फरमाता का लफ्ज किसके लिए? अल्लाह सुब्हान तआला के लिए। काला किसने? मूसा ने कहा। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है इन्नहा बकरतुन, वो एक ऐसी गाय है, ला फारिदुन वला बिक्रुन, ना तो बूढ़ी हो यानी ओल्ड डेटेड बहुत बूढ़ी, और ला बिक्र ना बछिया हो यानी ना तो बिल्कुल अर्ली एज की है कि समझ ही कोई नहीं, और ना बहुत बूढ़ी है। लफ्जी वजाहत में आपने देखा फारिद और बिकर का तो फर्क, कितने ही खूबसूरत लफ्ज हैं लफ्जों के एतबार से। फारिद का जो लफ्ज है इसी से फर्ज है, कटी हुई, ये जो हम कहते हैं ना फर्ज पढ़ने हैं नमाजों के, ये वही लफ्ज है, फर्ज पढ़ लें तो जान बख्शी हो जाती है, कट गई चीज। और फारिस वो औरत या वो बढ़िया या वो गाय या जो अपनी जिंदगी के दिन काट चुकी है, बूढ़ी खुसट जिसको हम कहते हैं, और बिकर छोटी, बाकिरा कहते हैं वर्जिन लड़की को, कुमारी लड़की को। सुबह की पोप उठती है ना तो वो भी बाकिरा वक्त होता है, और जवानी में बिल्कुल नई नई जवानी आती है तो इंसान के ऊपर एक हुसन होता है, बिल्कुल उसी की तरफ इशारा है कि ना बहुत छोटी हो ना बहुत बड़ी हो, अवानुम बैना ज़ालिका, इसके दरमियान की उम्र की कोई हो। और साथ ही कह रहे हैं फफलु मा तुमरून, अब कर डालो जो करना है, इससे क्या पता चलता है, कर डालो जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है, यानी ज्यादा सवाल ना पूछो। मूसा अलैहिस्सलाम नहीं चाहते थे, क्योंकि ये जितने सवाल पूछेंगे उतना उनके लिए ढूंढना मुश्किल होगा ना, इसीलिए अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि मेरे दीन में हलाल भी वाजे है हराम भी वाजे है, अल्लाह ताला ने हर चीज का हुक्म दे दिया है, जिससे रोकना था या जिसका हुक्म देना था, और जहां खामोशी है ना, कुछ बातें खामोश है शरीयत की, तो कहा उसमें उम्मत के लिए रहमत है। अब आज मैं आपको एक लफ्ज़ बोल दूं तो आपकी सोच ही कहीं भटक जाएगी, इसलिए मैं नहीं बोलती, लेकिन आज हम औरतों से रेलेवेंट कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि उसमें कोई नस ही नहीं है कि औरत ये करे ना करे। पहले कई सालों से आप सुनते आए और आप सब कहते हैं हराम है, बाल भी लगेगा तो हराम, कैंची भी लग गई तो हराम है, हालांकि उसकी कोई दलील नहीं, कोई नस नहीं, तो खामोशी है। तो उम्मत के जिन मसाइल में खामोशी है, कहा ज्यादा ना पूछा करो। अब ये मेरे और आपके लिए नहीं कि हम कुरान पढ़ना छोड़ दें, नहीं पूछ लिया तो मसला हो जाएगा, मतलब ये है कि खुरेद कुरेत ना करो, क्योंकि इनको करना नहीं था। अब ये सवाल बाज गए ना, और कह रहे कि ये बता दो वो बता दो, लेकिन असल मसला गम क्या था कि उनको करना नहीं था। खैर आगे देखिए मूसा अलैहिस्सलाम की इस बात के जवाब में कि देखो ये बात मुझसे अब ज्यादा ना पूछो, इनको क्या करना चाहिए था, फौरन काम कर लेते, लंबी चौड़ी बात ना करते, लेकिन इन लोगों ने फिर भी बात ना समझी और ज्यादा से ज्यादा लेने लगे बात के ऊपर। ये एक दो लफ्ज जो इसमें थोड़ा सा है, मैं इसमें मजीद वजाहत कर दूं आपके लिए, जो लफ्ज फारिस है ना, फारदा या फरोजो, गोश्त का घट जाना या कम हो जाना, यानी उम्र का वो हिस्सा जब गोश्त खुलना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ तो उम्र के साथ वजन बढ़ जाता है ना, जानवरों में वक्त के साथ वजन कम हो जाता है, और बाद में देखिए तो 60-70 की उम्र में वाकई यहाँ भी कम हो जाता है, खाया पिया नहीं जाता, जो भी होता है फिर वो वजन, तो उस उम्र को फारिस कहते हैं। और बिकर कहते हैं ऐसी गाय को जिसने अभी कोई बच्चा ना जना हो, यानी जिसके बच्चे ना हुए हों दरमियाने उम्र की, ठीक है। और अवान का लफ्ज जो है निसफ फिस सिन्नी मिन निसाए वल बहाइम, यानी औरतों और कैटल्स के अंदर बहाइम क्या होता है, बिल्कुल दरमियानी उम्र, मिडल एज जिसको आप कह लीजिए। फफलू कर लो, ख़त्म हो गई बात, बाल की खाल ना उतारो, बात चल गई तो चलते जाओ, सवाल ना पूछो। अगर वो मूसा की इतनी भी बात सुनकर ढूंढ लेते तो गाय आप उनको मिल जानी थी, लेकिन उन्होंने अभी भी अपने लिए मुश्किल खड़ी की और बात ना माननी चाहिए। अगर इतनी ही बात देखे ना, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब अल्लाह का कोई हुक्म आए तो उसको मान लेना चाहिए, और अगर अपने से कोई गलती हो जाए तो उस पर शर्मसार होना चाहिए। लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, ये जायज़ है कि नहीं, वो जायज़ है, ये हालात ठीक है, आज के दौर में क्या है वो है, लेकिन जब लोग कहते हैं कि ज़रा मुश्किल करो तो कैसे करो, आइए ज़रा देखते हैं। अब फिर एक और सवाल आता है, कालू दुलना, कहने लगे पुकार हमारे लिए अपने रब को, रब्बा का, युबैन लना मा लौनुहा, वो हमसे बयान करे उसका रंग क्या है। चलो पहले उम्र पूछी, अब रंग भी आ गए, लड़की देखने गए थे क्या, लग रहा है सही कि ये अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन ढूंढने गए हैं। मा लौनुहा, रंग कैसा है। काल इन्नहु यकूल, फरमाया, कहा, बेशक वो फरमाता है, इन्नहा बकरतुन सफराउन, ये तो एक गाय है जो जर्द रंग की, सफरा कहते शोख जर्द रंग को, जिसको हमारे यहाँ भी आप कह लेना कि जर्दा रंग, वो कहता है कि वो एक जर्द रंग की गाय है, और असफरा से मोनस है सफरा, ठीक है, तो मोनस के लिए लफ्ज आ गया, बकरतुन गाय है तो इसलिए साथ ही आ गया, फाक्यू लौनुहा, बड़ा खिलता हुआ उसका रंग है। अब आप सोचिए गाय में कैसी गाय होगी जो इतनी येलो हो कि उस पर बिल्कुल रंग भी उसका खिले। तसुर्रुन नाजरीन, खुश लगे, अच्छा लगे, अच्छी लगे देखने वालों को। सर्र या सुर्रु, सुरूर का लफ्ज उर्दू में हम बोलते हैं, खुशनुमाई के लिए, खुश कर दे, जमा नाजरीन है, यानी और सवाल पूछने लगे। इतने सुनहरी गाय, कहते कि इतना ज्यादा उन्होंने इस सवालों को क्यों पूछा, क्योंकि ऐसी गाय उनको मिलनी मुश्किल थी, और कहना चाहते थे हम कह देंगे कि ये तो मिलनी कोई नहीं, तो जरूरत ही नहीं है। बल्कि आज बाइबल में भी आपको इसमें इशारा मिल जाता है कि बनी इसराइल को हुक्म दिया, लेकिन ये इन्होंने अपने सवालात को बड़ा खूबसूरत तरीके से गोल कर दिया, यानी बहरहाल गोल्डन कलर की गाय चाहिए। कालू लना रब्बा का, अब तीसरी बार आ गए, पुकार अपने रब को, युबैन लना मा हिया, हमें बताए कि वो गाय कैसी हो। इन्नल बकरा तशाबह अलैना, बेशक गायों के मामले में हमें शुबा पड़ गया, यानी अभी भी बात कुछ क्लियर नहीं हुई। पीछे देखिए बकरा तो ना आ रहा था, यहाँ बकर है, ये मुजक्कर है, वो मुअन्नस थी, शुबा बढ़ गया। व इन्ना इंशाअल्लाह लमुहतदून, और हम अगर अल्लाह ने चाहा तो अब जरूर उसको पा लेंगे। ये आखिरी दफा पूछ रहे हैं जहाँ इंशाअल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर अब भी ये इंशाअल्लाह ना कहते तो क्यामत तक इस गाय को ढूंढ ना पाते, इनको ना मिलती, क्योंकि पाना नहीं चाह रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, काल इन्नहु यकूलू, का बेशक वो एक गाय है, इन्नहा बकरतुन, एक गाय है, ला जलूलुन तुसीरुल अर्दा, वो ऐसी गाय है जिससे कोई खिदमत नहीं ली जाती, वला तस्किल हरसा, न जमीन जोतती है न पानी खींचती है, मुसल्लमतुल लाशियत फीहा, सही सालम है बगैर दाग धब्बे के, यानी अब उसमें कोई स्पॉट भी नहीं है। कालुल आन जीता बिलहक, वो पुकार उठे, अब तुमने ठीक बताया है, फजबहूहा वमा कादू यफअलून, और उन्होंने उसको जिबा कर दिया हालांकि वो ऐसा करते मालूम ना होते थे। अब ये जो इसमें कुछ मुश्किल लफ्ज है देखिएगा जरा, ला जलूल का लफ्ज है ना, खस्ता खाली के मानों में आता है, कमजोर होना, मेहनत करके थक जाना, इशारा है उस गाय की तरफ जो खेती बाड़ी करने और पानी निकालने के अमल से खस्ता हाल हो चुकी हो, यानी ऐसी ना हो जो हो। और आसारा युसीरु इसारतुन, फसल उगाने के लिए यानी ज़रात के लिए ज़मीन को फाड़ने को कहते हैं, और तस्की पानी देना, जैसे पहले दौर में आपने कभी तस्वीरों में ही देखा होगा कि गाय होती थी बुल, और पानी जो खेतियों को पिलाया जाता था, जो आजकल ट्यूबवेल के साथ काम किया जाता है, तो बहरहाल उन्होंने इस काम को किया हालांकि वो करने वाले नहीं थे। कहते हैं कि ये गाय उनको बड़ी मुश्किल से मिली, कोई यतीम बच्चे थे उनके पास ये गाय मिली, अब जब उनके पास गए और उनको पता था कि इनको ज़रूर चाहिए, तो उन्होंने इसकी मुंह मांगी कीमत ली, और कीमत क्या पूछ ली, कहने लगे कि इस गाय की जो खाल है ना स्किन, उसके अंदर जितना सोना भर सके हमें उतना सोना चाहिए, फिर तुम्हें ये गाय देंगे। और चारों नजार उनको ये देना पड़ा और महंगी कीमत पे वो गाय इन्होंने ली। जब गाय ली तो उसको ज़िबा किया बड़े बुरे दिल से, और फिर उसका एक टुकड़ा गोश्त का जो था वो मुर्दे पे डाला, जो अगली आयत में आएगा, वह इस कतल तुम नफसम फदारा तुम फीहा। तुम्हें वो वाक्य भी याद है कि जब तुमने एक आदमी को मार डाला और तुम इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर थोप रहे थे, वल्लाह मुखरिज मा कुंतुम तक्तुमून, और तुम ये जानते ही नहीं थे कि जो तुम छुपाते हो अल्लाह ताला उसको जाहिर करने वाला है। तो यहाँ गोया के फिर वो काम हो गया जो उनको करना नहीं था। अब जाहिर देखिए कि ये वाक्य कैसे है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस सवाल ही तो इतने मासूम से पूछे थे जो हम रिश्ते के वक्त में लड़की वालियों से पूछते हैं, उम्र कितनी है, बड़ी तो नहीं है। और आप देखिए कि बाज़ दफ़ा शादियों के मौके पे, रिश्तों के मौके पे लड़कियों को भी गाय भैंस की तरह देखते हैं, और उस वक्त सारा जो फोकस होता है वो लड़की के हुस्न पे होता है। उम्र छोटी हो और दौलत बड़ी हो, अकल बड़ी हो, काम वो करे एक बड़ी मिच्योर औरत वाला, लानी हमें 15-16 साल की अल्लड़ लड़की है। अब वो अल्लड़ लड़की जब आती है 1 हफ्ते 10 दिन के बाद काम ठीक नहीं करती तो कहते हैं माँ ने सिखाया ही कुछ नहीं है। ये जहालत की बातें हैं, इस्लाम का मिजाज फ़र्क है। हम सब इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा गौर करते हैं, इसमें रवैया क्या दिख रहा है। पहली बात देखिए कि जब कौमों के ऊपर जवाल आता है ना, जब वो अखलाकी तौर पे बहुत ही गिर जाती है ना, तो अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होने की बजाय अपने उन गुनाहों को खोल के पेश करती हैं। इनको शर्म आनी चाहिए थी कि अल्लाह एक हुक्म दे रहा है हम मान जाएं, लेकिन मानने की बजाय इन्होंने अपनी उस बात को दूसरी तरफ रखा। दूसरी बात देखिए, ये अब मेरे और आपके लिए बड़ी काबिले गौर, और यही आखिरी आज के सबक का जो है ना मेन थीम है जिस पे आज आप गौर करते हुए जाएंगे, और वो क्या है, शरीयत। अब ये शरीयत का एक हुक्म था ना, शरीयत आसान होती है जब आप उसके दायरे में रहकर जिंदगी गुजारें। जो बंदा शरीयत के दायरे से बाहर जाके उल्टे सीधे सवाल करता है ना, तो शरीयत उस पर तंग होती है। शायद मेरी बात समझ ना आए, मैं आपको आसानी के लिए एक मिसाल देती हूँ। एक बकरी लें, उसके गले में आप एक रस्सी डालें और उस रस्सी को 2 फुट लंबा करके एक खूंटी से बांध दें। हम मिसाल ले लेते हैं कि यहाँ एक गाय है या बकरी है और उसके गिर्द में 2 फुट की रस्सी डली हुई है और उसको बांध दिया, उसके लिए खाना भी है और उस 2 फुट के अंदर उसके इस्तेमाल की सारी चीज़ें, पानी भी है, खाना भी है, और भी जो उसकी ज़रूरियात है उसको पूरा करने का इंतज़ाम मौजूद है। जो बकरी इस 2 गज के एरिए के बीच में रहेगी, उसके लिए रस्सी क्या है, सेफ्टी है, भागने से बच जाएगी, भेड़िए के हाथ में नहीं आएगी, प्रोटेक्शन है, उसको बांधा हुआ है मालिक ने, उसकी एक जगह है। फिर आप देखिए कि वो 2 फुट के अंदर बैठ जो चारा डाला हुआ है उसको खाएगी, मजे से खाना मिल रहा है। अगर वो बकरी इस 2 फुट से जरा बाहर जाना चाहे तो क्या होगा, गर्दन खींचेगी ना, वो रस्सी खींचेगी। बस इस मिसाल को लिख लें, शरीयत के दायरे में रह के जो मुसलमान आज भी जिंदगी बसर कर रहे हैं ना, ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना देना है किसी का ना लेना, सीधी सी बात है। अगर मिलता कुछ नहीं तो हमने भी तो किसी को कुछ नहीं देना, जो नसीब की रोटी पानी है वो मिल जाता है, खा के जिंदगी गुजार दी, और इज्जत तरक्की दौलत अल्लाह ने जो देनी होती है वो हमारी कोशिशों से तो देनी नहीं है। लेकिन जब अल्लाह की चुनी हुई कौमें और ख़ास तौर पे नबियों की उम्मतें जब शरीयत के दीवारों से बाहर जाना चाहती है ना, तो उनके लिए इस्लाम मुश्किल है। आज के मुसलमानों के लिए इस्लाम क्यों मुश्किल है कि हम शरीयत से बाहर जाना चाहते हैं। क्या सूद शरीयत के अंदर आता है कि बाहर? गबन, धोखा बाहर है कि अंदर? बेहिजाबी, बेहयाई, औरत का अपने कामों को छोड़कर बाहर जॉब्स पे जाना, क्या ये शरीयत की रस्सी के अंदर आता है कि बाहर आता है? बाहर आता है ना। माँ की गोद बच्चे के लिए बेहतरीन थी, उसको दे दिया एक नॉन मुस्लिम औरत के पास बेबी सिटर में कि वो उसको जो मर्जी म्यूजिक सुना सुना के सारा दिन खुश करते रहे और एंड पे आपसे 300-400 पाउंड ले। ऐसे ही होता है ना, वो तो काम करे और माँ जाके जो कमा के लाती वो सारा बच्चों पे लग जाता है। कल रात मेरी किसी से बात हो रही थी तो मैं उनसे बात करते हुए बड़े प्यार और मोहब्बत से, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा सुनने वाले लोग, और मैंने कभी इस तरह के लोग नहीं देखे। तो कुछ उनका मसला था, क्लासेस के साथ क्लैशिंग हो रहा था, जॉब या कुछ इस तरह का मामला, तो काफ़ी स्ट्रगल में कि उन्होंने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा सा बीच में जाना पड़ेगा और दिस एंड दैट। तो मुझे समझ आती है, मैं हमेशा आपको भी वही दिखाऊंगी जो उनको दिखाती हूँ, ये देखिए ये 2 उंगलियाँ हैं ना, ये दोनों साथ जुड़ी हुई है ना, आप सब देखें, बल्कि करीब वाले भी, अभी ये साथ है, ये देखिए नीचे से थोड़ा सा मैंने इस उंगली को अलग किया ना, शुरू में ये डिस्टेंस कितना है, मे बी फ्यू सेंटीमीटर, ऊपर आते जाए डिस्टेंस बढ़ता जाता है। दो चीज़ें साथ है, आप लगाएं, ये आप हैं, ये आपका कुरान है, ये कोर्स है आपका, ठीक है, ये हम सबकी नेमत है ना, उस कुरु नेमत ही अल्लाह की नेमत है। अब जब ये नेमत दी अल्लाह ने हमें, तो ये मैं और आप इस वक्त इस कुरान से जुड़े हुए इस कोर्स में, मैं कहूँगी बस मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, ये नीचे शुरू में एक ही रहूँगी ना, फिर होते होते दो की, होते होते ये, और एक वक्त आएगा आप इसको ले जाएं दो दो फुट आगे, हर रास्ता जुदा, हमेशा क्लैश या सेपरेशन एक नुक्ते से शुरू होती है, इस नुक्ते को बंद करते हैं। खैर मैंने उनसे बात की, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन यकीन करें वो मेरी बात सुनते ही समझ करी, बिल्कुल मैं भी यही चाहती थी, मैं कल ही जवाब दे के आ रही हूँ, मैं भी थक गई हूँ, आती हैं क्लास में, यहाँ से उठ के उनको जाना पड़ता है किसी मजबूरी में, और इंसान है ना शुरू में मजबूरी में जाता है, खुद उन्होंने रियलाइज़ किया कि मजबूरी में गई थी, तब लग रहा है कि चलो कुछ पैसे ही आ रहे हैं ना, तो ये तो वो, मैंने कहा सच बताएं जो आपको पैसे मिलते हैं आपके हाथ में रहे, कहती नहीं रहे, वो तो उधर दे दिए इसको दिए, तो मैंने एक जुमला उनको बोला जो सबको बोल देती हूँ, आगे जाके आएगी बात इस पे सूरत निसा पे भी, मैंने कहा जब औरतें निकल पड़ती हैं ना काम करने, तो मर्दों का रिस्क कम हो जाता है, सच्ची सो बात है, अल्लाह ने तो एक ही रखा हुआ था नसीब में, मैंने कहा आप कहती हैं कि मैंने ये काम किया ताकि मैं अपनी बच्ची का या बच्चे का फुला खर्चा पूरा कर दूं, तो आप ना जाती तो ये उसका लाइसेंस फिर भी हो जाना था, अल्लाह ने आपके मियाँ को उस दिन ज्यादा सवारियां दे देनी थी, मियाँ साहब ने उतना कमाया, रिस्क एक ही इस छत के नीचे, मियाँ और बीवी का एक ही जितना आना है, जब मैं भी लाऊंगी तो मर्द को कम मिलेगा, अल्लाह ने देना तो इतना, और बाद जब होता है कि सारा फिर औरतें करती है तो मर्द बेचारे अकेले घर आके बैठ जाते हैं। ये जो आज के दौर के डिसऑर्डर है ना जिंदगी गुजारने के, फुलां भी ले आओ फुलां के पास कुछ नहीं कुछ नहीं, हम देखें कि हमने अपनी शरीयत की रस्सियों को कहाँ कहाँ काटा हुआ है, वल्लाही आज सच्चे मुसलमान बन के बिल्कुल उस बकरी को आप जहन में लाएं, सर डाल के ना बैठ जाए, मालिक ने पानी रखा उसको पी रही है, मिनमना रही है, प्यार से उसको देख रही है, उसकी आंखों में आंसू है, मालिक उस पर कितना प्यार आएगा, कभी आपने दुनिया में कोई ऐसा मालिक देखा है कि गले में रस्सी बांध के बिठा दे और भूखा मारे, मेरे वाले लोगों का जो बच्चे जो पेट्स को पालते हैं खुद ना खाएं लेकिन उनको गम ये पड़ा होता है कि मेरा पेट ना भूखा रहे, तो हम इंसान किसी को बांध के भूखा नहीं छोड़ेंगे तो वो रज़ाक भूखा छोड़ेगा, एक दफा उस कदमों में सर रख के देखें, हैंड्स अप, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जब आप इस रूम में आएंगे और एक दूसरा दरवाजा खोल के आएंगे ना बाहर का, कभी आप यहां नहीं चिकमेंगे, लो मैं आई, आते ही जाते सोचना पड़ेगा अब जाऊं कैसे, सारे दरवाजे बंद करके या करना बुदू से जो कौम जीतती है ना, फिर अल्लाह बदर का मौका लाता है, 313 जीते क्या आज नहीं जीत सकते, लामा इकबाल का वो शेर है जिसका खुलासा क्या है कि तू बदर वाली फिजा तो पैदा कर, आज भी फरिश्ते तेरी मदद को आसमान से वैसे ही उतरेंगे जैसे उतरे थे, ये आज हम चलिए बात तो खुल के होती है ना, हम कोई सियासी बात नहीं करें, हम तो इस वक्त अब मुसलमानों की उम्मत के हाल पे रो रहे हैं, 64-65 ईयर्स हो गए ना कश्मीर के एक टुकड़े पे झगड़ते हुए दो कौमों को, आज तक क्यों नहीं मिला, आपने कभी सोचा, ना वो ईमान है और ना वो कॉज है, आज भी अगर आप इस इशू को अल्लाह के नाम पे जमा करेंगे ना कि हमें उस जमीन को शिर्क से पाक करने के लिए आजाद करना है, तो अल्लाह एक महीने से ज्यादा जंग नहीं लगी कोई भी, अल्लाह के नबी की जिंदगी की मैक्सिमम जंग बस एक महीने के अराउंड होती थी, 64 ईयर, नस्ल एक जाके दूसरी दुनिया से आके अब जाने वाली हो गई, लेकिन आप देख लीजिए कि वो जगह क्यों नहीं मिलती, हमेशा अल्लाह की मदद आपके साथ तब आएगी जब अल्लाह के लिए करेंगे, आप ये काम करने लग गए हैं ना अभी, अल्लाह ने आपसे एक छोटा सा बीज डलवा लिया ना, आप इसको अल्लाह के लिए करते जाएं, आपको वो नहीं दिख रहा जो मुझे दिख रहा, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने सीरत पढ़ी है, मैंने बहुत लोगों के हालात पढ़े हैं ज़िंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह यूं अल्लाह की मदद आती है बंदे के ऊपर कि बंदा सर नहीं उठा सकता सर सजदों से, कि अल्लाह की ज़ात उसको मदद कैसे करती है, और अगर मैं और आप चाहें ना कुछ करें, वो अल्लाह ही सारी ज़िंदगी कोशिशें करते रहेंगे ना, हम एक गज़ जगह नहीं अपनी ले सकते, हम एक बंदे के दिल तक कुरान की बात नहीं ला सकते, ये बात नहीं समझ आती आज हम दीन वालों को भी, इसलिए हमने इस दीन को कमज़ोर किया, हम लोगों के ये सवाल जवाबत पे टिकते हैं, ये तो मूसा थे तो टिक गए, या एक और नुक्ता देखें, इतने जो मूसा सवाल कर रहे हैं तो एक दफा कहते अच्छा चलो छोड़ ना ही ज़िबा करो, कह सकते थे ना, और अगर मूसा ये कहते तो उन्होंने मूसा को हीरो बना लेना था, सर पे चूमो ये है हमारे लीडर, इनसे फतवे पूछो, इनकी बातें बड़ी आसान है, मूसा कहाँ जम गए? अल्लाह के बंदो, फसलु मा तुमरून, कर बैठो अब जो कह दिया। ये आज उलमा हो तो इनको लोग कहते हैं ये हक वाले बड़े सख्त हैं, ये कॉम्प्रोमाइजिंग ही नहीं, ये तो बहुत ही रिजिड है। फुलां कहता है जायज़ है, फुलां कहता है जायज़ है, फुलां कहता है रुख्सत है। ठीक है, होगी रुख्सत, लेकिन तुम अजीमत का रास्ता इख्तियार करो। अगर क्रीम बनना है ना, क्रीम आप देखिए, एक कप चाय का हो या आप लस्सी का देखे, लस्सी पूरे ग्लास में है और उसके ऊपर बटर और क्रीम कितनी है, इतनी सी। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्यामत तक एक गिरोह हक पे रहेगा, दुश्मन उनकी दुश्मनी, दुश्मनों की दुश्मनी नुकसान नहीं देगी और वो हक पे रहेंगे। तो आज आप और मैं अगर इस कुरान से जुड़े, अल्लाह ने भी तो हमें सारे वसीलों से काट के अपनी किताब पकड़ा दी ना, कि तुम मेरी किताब पकड़ लो। आप सोचिए ना जरा, मैं इस वक्त सोचती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि ये देखिए ये कुरान है ना, अब ये कुरान पाक जो है ये मेरा कुरान है, अल्लाह ने मुझे कहा तुम ले लो। इस किताब का दूसरा सिरा किधर है? चौथा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत आले इमरान में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ। अब इस किताब का एक सिरा अल्लाह के पास है, दूसरा उसने मुझे और आपको दिया। हमारा उसने थोड़ा सा मुकाम ऊंचा किया ना, तो हमें भी तो ऊंचे काम करने हैं। मत रोएं, मत दुखी हो वल्लाही, और इस नेमत की कदर करें। आपका एक एक मिनट कीमती है, एक एक दिन का लम्हा कीमती है। यहां से जाने के बाद भी आप अपने नहीं है। कमिटमेंट्स अगर भूलेंगे, अल्लाह से किए हुए वादे या उस्तादों से किए हुए वादे, नुकसान आपका होगा। आप रातों को नहीं जागेंगे, आप जाके तर्जमा नहीं याद करेंगे, आप जाके नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल उठ जाएगा। होता पता क्या है, अपने अंदर अलामते जहां देखे फौरन डॉक्टर के पास पहुंच जाए, दिल उठ जाता है। और जिस दिन खुदा न खास्ता आप ये वाली जो उंगलियां वाली मिसाल है कि इधर से सेपरेट हो रहे होंगे ना, तो आप उस वक्त कोई दुखी होंगे? आप कहेंगे नहीं, मैं ठीक समझ, इनको मेरा मसला नहीं पता, मैं इतनी बीमार हूं, मैं इतनी परेशान हूं, मैं इतनी हूं। हालांकि उनका मसला इधर आके ठीक होना था। शैतान उनको उस वक्त भी शैतान यही डाल रहा था कि यू आर राइट, यू आर राइट, तुम ठीक काम कर रहे हो। हुज्जतें करके हम कहते हैं अब इस कोर्स को ही ले लेना। आपको कोई कह दे कि आप किसी को कहे, आप कहते होंगे कोर्स करें, तो फिर देखे लंबे सवाल, पहले बात करने की टोन बिल्कुल और होती है। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, खुश हैं। आप जो ही बात करेंगे ना कि मैंने कोर्स शुरू किया, आप आए तो आप देखेंगे कैसे लगता है, वो गुब्बारे में से हवा ही निकल गई और रो ही पड़ते हैं लोग। तो मैं कहती हूँ अब बस करो और ना इनको रुलाओ, ऐसे लगता है इनसे ज्यादा मजबूर और कोई मकहूर शख्स नहीं है। तो हुज्जते नहीं करनी, तौफीक मांगो, अल्लाह करने की तौफीक दे। जब कोई कौम अल्लाह से तौफीक मांगती है, अल्लाह उसको दे देता है। वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर, सूरत कमर आयत 17 में आता है। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान किया है, कोई है नसीहत लेने ला? अब आपके मुझे तर्जमा ही नहीं याद होता, मैंने कोर्स नहीं करना, मुझसे 4 दिन नहीं, आप देखिए 5 से 4 पे आए हैं, बहुत बड़ा रिस्क है आपके लिए। मैं आपको, मैं दिल में बात नहीं रखती, मैं आप सब स्टूडेंट्स को कहूंगी, सब जितने भी हैं इस वक्त इधर, आपके लिए अल्लाह ने 5 दिन रखे थे, आपने 4 चूज किए हैं। अगर आपने इस 4 में वो 5 वाला काम ना किया, वल्लाही आपने एक दिन काम करके कितनों के लिए खैर के दरवाजे खोल दिए। कोई वीकेंड मेरे पास खाली नहीं है अब अगले कई महीने तक। कईयों की खैर अल्लाह ने आपका हिस्सा उनको दे दिया, काम तो होना ही है। सूरज इधर नहीं निकलेगा उधर निकल जाएगा, इल्म इधर नहीं देना कहीं और दे देंगे, और बहुत रिलैक्स्ड है। लेकिन आप बचेंगे तब जब आप पकड़ के रखेंगे। तो ये हम सब का इम्तिहान है। अल्लाह आज भी उम्मत मुस्लिमा को पुकार रहा है कि आओ मेरी तरफ, तुम मेरे नबी की उम्मती हो, को तुम कोई छोटी कौम हो? वल्लाही वो कहते हैं ना कि तू मेरा नहीं बनता, अपना तो बन। आज उम्मत मुस्लिमा को पता चल जाए तो फिर आप देखें, वलामा इकबाल ने भी कहा ना कि हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। अल्लाह तला कहता है हम कर्म करना चाहते हैं, ये सवाल ही नहीं है, राह दिखलाएं किसे? अल्लाह राह दिखाना चाहते हैं उम्मत मोहम्मदिया को, राह रवे मंजिल ही नहीं। इनकी कोई, इनका कोई लीडर नहीं है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, एक भीड़ बनी है, खा पी रहे हैं बस, मौज मस्ती हो रही है जिंदगी में। तरबियत आम तो है, यानी आम तौर पे तरबियत तो है, जौहरे काबिल ही नहीं है। तरबियत के नतीजे में निकल क्या रहा है? ठुस, कहाँ क्वालिटी है हमारे पास? हम 10-10 साल एक सांचे में ढलने के बाद फिर वैसे के वैसे, ना हमें कुरान का इज्जत आती है, ना कुरान की महफिल के अदब आते हैं। उसके बाद ही जब खाने खुलते हैं और जब दावतें होती हैं खाने की, कुरान की, मैंने खुद आजमा के देखा है कि कुरान की क्लास जो हफ्ते में एक दिन लोग करते हैं ना, कई ऐसी मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह कई जगह ऐसी अटेंड की हैं, उस वक्त तो जो माहौल है, और उसके बाद वन डिश, कभी कोई ले आता है कभी कुछ, उस क्लास में तो घंटा डेढ़ लगता है और वो वन डिश में शायद घंटा डेढ़ लग के, और उस वक्त कभी लोगों की बातें सुने। मैंने मस्जिदों में लोगों को गिबते करते देखा। मैं कहती हूँ ये जुबान कैसे खुलती है, चीख रहे। अल्लामा इकबाल कहते हैं तरबियत आम तो है, जौहर काबिल नहीं है। हमारे अंदर से जौहर नहीं निकल रहे आज। जिससे तामीर हो आदम की, ये वो गिल ही नहीं है। कहते हैं कि जिससे आदम को बनाना था वो मट्टी, गिल मट्टी को कहते हैं फारसी में। कहते हैं ये वो आज का आदम नहीं है कि जिससे नस्लें बने, क्योंकि आज हम भूले हुए लोग हैं। गैरों के पीछे चलेंगे तो ऐसे ही होगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह इस भटकी हुई कौम को एक नेशन बना दे। और यही आज का सबक था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।